दिन भर रविवार 18 दिसंबर आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत में सेना प्रमुख की नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी।
शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन जनरल जो अलग अलग आर्मीज को कमांड कर रहे हैं, ईस्टर्न आर्मी, सदर्न आर्मी और सेंट्रल आर्मी, उनको इस तरह से सुपरसीड किया गया है। हम प्रधानमंत्री।
पोलैंड की संसद में मीडिया के लिए नए नियमों पर मचा है बवाल, संसद की घेरेबंदी तीसरे दिन भी जारी। संडे दिन भर में आज हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से होगा सवाल जवाब, क्या नोटबंदी को सांप्रदायिक रंग देने की हो रही है कोशिश?
अगर मैं मुसलमान की बात करा तो क्यों किसके पेट में दर्द हो रहा, मैं कोई पाकिस्तानी की बात तो नहीं कर रहा हूँ।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। लखनऊ में खेले गए जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया है। भारत की जूनियर हॉकी टीम 15 साल बाद इस खिताब को जीतने में कामयाब हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे, जो मौजूदा आर्मी चीफ दलवीर सुहाग की जगह लेंगे। वरीयता क्रम में दो वरिष्ठ अधिकारियों से पीछे होने के बावजूद मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रावत को सेना प्रमुख बनाया है। वे 1 जनवरी से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पर विपक्षी कांग्रेस और वाम दलों ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में काले धन के मुद्दे पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी स्वराज इंडिया पार्टी की रैली को संबोधित करने के दौरान योगेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा,
इन चुनाव में बजाय कि अपने उम्मीदवार उतारे, इन बड़े विधानसभा चुनाव में हमारी पहली भूमिका ये होगी कि यहाँ जाएं, हम चौकीदारी का काम करें और काले धन के विरुद्ध जन जागरण करें, और जहाँ जहाँ राजनीति में इन चुनावों में काले धन का प्रयोग होता है उसके बारे में आवाज बुलंद करें। राजनीति में ये हमारा पहला कदम होगा।
ये थे स्वराज इंडिया पार्टी के योगेंद्र यादव। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय देश पोलैंड में मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध की योजना के विरोध में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी वारसा में जुटे प्रदर्शनकारी गाड़ियों के हॉर्न बजा बजाकर पोलैंड और यूरोपीय संघ के ध्वज लहरा लहरा कर अपना विरोध जता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में विपक्षी सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने संसद के मुख्य कक्ष की घेराबंदी कर रखी है। सीरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि पूर्वी अलेप्पो में फंसे नागरिकों और विद्रोही लड़ाकों को निकालने के लिए बसें शहर में दाखिल हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि शहर में फंसे लोगों को निकालने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। सीरियन रिलीफ के मुनीर हकीमी ने बीबीसी को बताया, जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें पश्चिमी अलेप्पो में ले जाया जाएगा। मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जिनकी हालत नाजुक होगी उन्हें इलाज के लिए तुर्की भी ले जाने की योजना है। हम यहाँ गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज नहीं कर पाएंगे। बाकी लोगों को शरणार्थी शिविरों में ले जाया जाएगा। ये थे सीरियन रिलीफ के मुनीर हकीमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन के दक्षिणी शहर अदन में एक आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 50 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने यमन के सैनिकों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपना वेतन लेने के लिए सैन्य कैंप में कतार लगाकर खड़े थे। अदन में ही एक हफ्ते पहले भी इस्लामिक स्टेट ने इसी तरह सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 50 सैनिक मारे गए थे। म्यांमार में सरकारी सैनिकों ने देश के दक्षिणी हिस्से में विद्रोहियों के एक अहम ठिकाने पर नियंत्रण कर लिया है। भीषण लड़ाई में सरकारी सेना और काचिन स्वतंत्र आर्मी दोनों पक्षों से लोग मारे गए हैं। म्यांमार में लोकप्रिय नेता आंग सान सूची सेना और विद्रोहियों के बीच शांति समझौते के लिए प्रयास करती रही हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बाद अपने आखिरी औपचारिक भाषण में कहा है कि वे सकारात्मक सोच रहे हैं। ऐसा कहकर ट्रंप ने निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को आड़े हाथों लिया है। मिशेल ओबामा ने कहा था कि अब कोई भविष्य, कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मिशेल ओबामा भविष्य नहीं अतीत की बात कर रही हैं, क्योंकि अमरीका में अब बहुत उम्मीदें, बहुत संभावनाएँ हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। और जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अभी अभी खबर आई है कि भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया है। बेल्जियम ने बिल्कुल आखिरी सेकंड में गोल दागकर जीत का अंतर 2-1 जरूर कर दिया, लेकिन उनकी हार हुई। भारत की ओर से पहला गोल 8वें मिनट में गुरजन सिंह ने किया था और दूसरा गोल 22वें मिनट में सिमरनजीत सिंह ने किया था। भारत ने 15 साल बाद यह खिताब जीता है। आदेश कुमार गुप्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी है ये जीत?
जी बहुत बड़ी। साल 2001 में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीतने के ठीक 15 साल बाद एक बार फिर भारत ने अपनी बादशाहत हासिल की और आज दूसरी बार जूनियर विश्व कप हॉकी चैंपियन बना। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए पुरुषों के जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट को आज भारत ने जीता और जैसा कि आपने बताया कि आखिरी मिनट में ठीक 58 सेकंड पहले बेल्जियम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, गोल भी हुआ, लेकिन गोल होने के बावजूद बेल्जियम के खिलाड़ी आंसुओं के समुद्र में डूब गए, जबकि लखनऊ जो कि नवाबों की नगरी है तब तक भारतीय खिलाड़ी जैसे ही हुटर बना जूनियर विश्व चैंपियन बन चुके थे। और निकल ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर विश्व कप की बात की जाए हॉकी में तो 1975 में भारत की सीनियर टीम ने विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था। साल 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। तो उसके बाद जब साल 2001 में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट भारतीय हॉकी टीम ने जीता तो उसके बाद विश्व स्तर पर यह सबसे बड़ी जीत है। तो आप देखिए कि कितना हॉकी का इतिहास कि हम 8 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे, लेकिन आज भारतीय हॉकी टीम ऐसा लग रहा है कि जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और लखनऊ में आज स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। और निखिल एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे मैदान में सिर्फ भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। अगर आखिरी मिनट को छोड़ दिया जाए जब गोल हुआ, बेल्जियम पूरे मैच के दौरान कहीं नहीं था।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ते इस पूरे विस्तृत समीक्षा के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबरों का। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत ने जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि भारत सरकार ने थल सेना प्रमुख के पद पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को तैनात करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट बिपिन रावत की नियुक्ति का ऐलान कल किया गया, लेकिन इसके साथ ही एक विवाद भी उठ गया क्योंकि दो उपसेना प्रमुखों की वरिष्ठता को नज़रअंदाज कर ये नियुक्ति की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये नियमों की गंभीर अनदेखी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मीडिया से कहा,
शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन जनरल जो अलग अलग आर्मीज को कमांड कर रहे हैं, ईस्टर्न आर्मी, सदर्न आर्मी और सेंट्रल आर्मी, उनको इस तरह से सुपरसीड किया गया है। हम प्रधानमंत्री जी से ये चीज पूछना चाहते हैं दैट व्हाट वाज द कंपेलिंग रीजन एज टू व्हाई दिस सुपरसेशन हैज टेकन प्लेस।
कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों और लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के कार्य अनुभव को ध्यान में रखकर उनकी नियुक्ति की गई है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी को सुनिए।
मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही कि वो सत्ता से बाहर हो गई है। 2.5 साल से ज़्यादा बीत गया, वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं और जो भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया है, उसके तहत सरकार कर रही है, उसमें जो है वो 10 जनपद के अनुमति की ज़रूरत नहीं है।
ये थे बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने ये कहा कि नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। कांग्रेस कह रही है कि नियमों की अनदेखी की गई है, तो ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए आइए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल से, जो लंबे समय से सेना की गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करते आए हैं, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रेहान, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि आखिर भारत में सेना प्रमुख की नियुक्ति होती कैसे है?
देखिए, अभी तक जो प्रथा चली आ रही है, जो कन्वेंशन है, उसमें वरिष्ठता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस तरह के उदाहरण भी हैं जब वरिष्ठता को दरकिनार कर कम वरिष्ठ आदमी को सेना अध्यक्ष बनाया गया है, सेना प्रमुख बनाया गया है। सबसे पहला उदाहरण आया था 1983 में जब जनरल एस के सिन्हा सबसे सीनियर जनरल हुआ करते थे, उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कर उनसे जूनियर जनरल ए एस वैद्या को सेना प्रमुख बनाया गया था और जनरल सिन्हा ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। इससे एक साल पहले भी कुछ इस तरह की बात हुई थी, जनरल पी एस भगत हुआ करते थे विक्टोरिया क्रॉस विनर, वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे जनरल मानेकशॉ के बाद, लेकिन उनसे जूनियर उनसे जो वरिष्ठ थे जनरल बेबूर को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया, जिसकी वजह से जनरल भगत रिटायर हो गए और जनरल बेवूर नए थल सेना अध्यक्ष बने। तो इस तरह के उदाहरण हैं, लेकिन बहुत पहले, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 1983 और इससे पहले 1972-73, उसके बाद से वरिष्ठता को ही मेन क्राइटेरिया माना गया है और कम से कम थल सेना में वरिष्ठता के आधार पर इस तरह के अपॉइंटमेंट हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जिसके संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, पहला संकेत मिला था 1 सितंबर को जब जनरल रावत को वाइस चीफ बनाया गया था। उस समय भी प्रवीण बख्शी सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका हक बनता था वाइस चीफ बनने का, लेकिन उस वक्त उनको इग्नोर किया गया। और फिर दूसरा संकेत मिला जब आमतौर से सेना अध्यक्ष की नियुक्ति 2 महीने पहले, 60 दिन पहले होती है, जबकि वर्तमान सेना अध्यक्ष रिटायर होने वाला होता है, लेकिन कल उनकी नियुक्ति हुई है मात्र 12 या 13 दिन पहले। तो ये इस तरह के संकेत थे कि सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और दूसरा, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड निर्णय लिया है कि एक नहीं 2 लोगों को उन्होंने सुपरसीड किया है। एक तो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, जो कि ईस्टर्न कमांड के चीफ हैं, और दूसरे पीएम हरीश, जो कि सदर्न कमांड के चीफ हैं। ये दोनों वरिष्ठ हैं जनरल रावत से, लेकिन जनरल रावत को तरजीह दी है वर्तमान सरकार ने।
क्या वजह हो सकती है, उनके कार्य अनुभव की बात कर रही है सरकार की, मौजूदा परिस्थितियों में वो ज्यादा योग्य हैं?
देखिए, वजह बताई जा रही है कि उनको ऑपरेशनल अनुभव ज्यादा है, उनको एंटी इंसर्जेंसी का अनुभव ज्यादा है। लेकिन प्रवीण बख्शी भी न सिर्फ सीनियर मोस्ट हैं, उनकी भी बहुत कदर होती है, उनको भी एक बहुत काबिल अफसर माना जाता है, उनके नाम भी कई उपलब्धियां हैं। लेकिन जाहिर है सरकार ने इन सब पर विचार किया है। और अंत में होता यह है कि 5 अफसरों का एक पैनल कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास भेजा जाता है, और अभी तक उसमें वरिष्ठता को वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब लगता है दूसरे कारणों को या कारकों को वरीयता दी गई है, और इस वजह से जनरल बिपिन रावत नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं।
बहुत शुक्रिया रेहान फजल इस पूरी जानकारी के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। पोलैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है, वहां संसद के बाहर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन देते हुए संसद के केंद्रीय कक्ष की घेरेबंदी कर ली है। आज तीसरा दिन है जब विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार ने संसद की गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए केवल कुछ ही मीडिया संस्थानों को अनुमति देने का फैसला किया है और इसी बात का विरोध हो रहा है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
पोलैंड में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ तीसरे दिन भी डटी हुई है। राजधानी वारसा में सत्ताधारी दल और विपक्षी दोनों के समर्थक प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले हैं। सरकार ने संसद में कुछ ही मीडिया संस्थानों को प्रवेश की अनुमति देने का नया नियम बनाया है। इस नियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी शनिवार को भी पूरी रात संसद के बाहर जमे रहे। संसद पर घेरा डालकर बैठे प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दलों के सांसदों का भी समर्थन मिल गया है। धरने पर बैठी एक महिला एना ने कहा कि वो सरकार की ओर से दी गई घटनाओं के ब्यौरे को स्वीकार नहीं करेंगे।
हम सब यहाँ चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी राय पर विचार हो, जो प्रधानमंत्री के प्रतीकों के बिल्कुल खिलाफ है। जाहिर है कि हम जो हैं यहाँ वो सब नहीं है, हमें गुंडा माना जा रहा है जिसे हम गलत साबित करना चाहते हैं।
इन विरोध प्रदर्शनों के साथ देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है, क्योंकि विपक्षी दल भी विरोध कर रहे लोगों के साथ आ मिले हैं। विपक्षी दल के सांसद स्लावोमिर नोयमान ने कहा,
हम संसद में हैं। मंगलवार तक संसद के सत्र की शुरुआत और पोलिस संसद में कानून संगत व्यवस्था वापस आएगी। संसद के बाहर जो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं कि वो मंगलवार को संसद के सामने साथ आएं। संसद के भीतर हम लोग स्पीकर कुचिंस्की और पोलैंड में कानून व्यवस्था के बुनियादी नियमों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
विपक्षी दल के सांसद स्लावोमीर के शब्द। इससे पहले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने भी हालात पर चिंता जताई और पोलैंड की सरकार से कहा है कि वो संविधान का सम्मान करे। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना मीडिया के लोकतंत्र तानाशाही बन जाता है।
सावधान रहिए कि आजादी का यूरोपीय मॉडल पोलैंड और पूरे यूरोपीय संघ में कायम रहेगा या नहीं, ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, ना ही ये वैचारिक सिद्धांतों के बारे में कोई अकादमिक विवाद है। ये सवाल हमारे भविष्य, अस्तित्व, हमारी सुरक्षा और हमारे बचे रहने के बारे में है। लोकतंत्र के यूरोपीय मॉडल को जो कोई भी कमजोर करेगा, संविधान की अवहेलना करेगा और अच्छे तौर तरीकों को बदल देगा, वो हम सबको एक रणनीतिक जोखिम में डाल देगा।
पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और यूरोपीय परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क के शब्द। पत्रकारों और संसद के स्पीकर के बीच नए नियमों को लेकर बातचीत में शनिवार को सहमति नहीं बन पाई। अब उनके बीच अगली बातचीत सोमवार को होगी और तब तक मुमकिन है कि कोई रास्ता निकाल लिया जाए।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। आज रविवार है और ये वो दिन होता है जब हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्सियत से। भारत में नोटबंदी लागू होने का असर सब पर हुआ है और सारे लोग अपने अपने तरीकों से अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कोई खुश है तो कोई नाराज और कोई बहुत नाराज, और कुछ लोग हैं जो बहुत परवाह नहीं कर रहे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर उनका आरोप है कि मुस्लिम इलाकों में मौजूद बैंकों और एटीएम में पैसा नहीं डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ हालात ज़्यादा बिगड़ गए। तो क्या है उनके ऐसा सोचने की वजह? साथ ही कई और सवालों को लेकर बीबीसी संवाददाता विनीत खरे और सलमान रावी ने उनसे बात की। आइए सुनिए सवाल जवाब।
ओवैसी साहब पर सबसे पहले जो आरोप लग रहे हैं कि जो पूरी नोटबंदी की जो डिबेट है उसे कम्युनलाइज किया है उन्होंने। उन्होंने एक रैली में कहा कि मुसलमान इलाकों में एटीएम में पैसे पहुंच नहीं रहे हैं, लोगों तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, मुसलमान परेशान है। ओवैसी साहब, हर चीज में आप मुसलमान का एक एंगल ले आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप?
नहीं, शायद आदत है मेरी, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने कम्युनलाइज नहीं किया है। देखिए, अगर आप आरबीआई का दीपक मोहंती कमेटी रिपोर्ट देखेंगे जो 2015 की, उन्होंने कहा कि लेस देन हाफ जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वैसे ही एक और आरबीआई की रिपोर्ट है, कमिटी ऑन मीडियम टर्म पाथ ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो ये कहती है कि हिंदुस्तान में 68% हाउस होल्ड के पास बैंक अकाउंट्स हैं और मुसलमानों के खाली 50% है। तीसरी बात, एमएसएम मिनिस्ट्री ने कहती है कि 20% इंडस्ट्री कम हो गई मुसलमानों की, इसलिए कि बैंक से लोन नहीं मिलता। वर्ल्ड बैंक की सीजीएपी की रिपोर्ट है। ये तमाम चीज़ें सामने रखकर अगर मैंने ये बात कही है, और ये हकीकत भी है, क्योंकि जो मार्जिनलाइज एरियाज हैं मुसलमान, दलित और ख्वातीन के, आप जाकर देख लीजिए वहाँ पर,
ठीक है,
जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो पैसा वहाँ पर नहीं डालते। कहाँ डालते हैं? सबसे पहले जहाँ पर ज्यादा डिपॉजिट्स हैं।
आप जो बोल रहे हैं कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें नौकरियों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है। लेकिन आपने जो रैली में बोला, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते हैं तो रेड जोन करार देते हैं, लोन नहीं मिलता, एटीएम लगाते हैं तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है, हमारे इलाकों में नए नए इलाकों में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता है। ये तो कम्युनलाइज नहीं कर रहे हैं आज आप, बिल्कुल उसको शिफ्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल सही है, आपके पीछे कनॉट प्लेस है, वहाँ पर चलिए मेरे साथ और वहाँ पर जितने मुसलमान खड़े हैं उनसे पूछ लिए कि तुम कितने जामा मस्जिद से आए यहाँ पर। ओखला चलिए और न्यू पैलेस चलिए, वहाँ पर जाके पूछते हैं। ये मैं मानता हूँ इस बात को कि इस मुल्क में पैसा नहीं है, मगर सबसे ज्यादा खिल्लत इन इलाकों में हो रही है जहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन।
ये आप किस आधार पर कह रहे हैं?
मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा चुका हूँ, मैं कनॉट प्लेस में एटीएम्स के पास जा चुका हूँ, मैं ओखला में लोगों से बात कर चुका हूँ, ये हाल है। और कहीं पर भी एटीएम्स बंद पड़े, एक दिन दो दिन नहीं, 10-10, 12-15 से एटीएम बंद पड़े।
वैसे साहब, ये सिर्फ मुसलमान बहुल इलाकों में हाल नहीं है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, हर जगह खबरें आ रही है। आप अकेले हैं शायद जो कह रहे हैं कि मुसलमान इलाकों में ज्यादा समस्या है।
मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा है, और दूसरी बात यह है कि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये लोग कैश इकोनॉमी में डील करते, जो लोग कैश इकोनॉमी में डील करते उनका बैंक से ताल्लुक नहीं होता। और जब कैश इकोनॉमी में डील करते, आपने मिसाल के तौर पर हिंदू अखबार ने खबर छापी है कि जो जरदोजी का काम करते हैं लखनऊ अतराफ में, 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए।
वैसे साहब, मैं पुरानी दिल्ली से आया हूँ, हिंदुओं से बात की है, जिनकी दुकानें हैं वो परेशान है, वो रो रहे हैं, सिर्फ मुसलमान थोड़ी रो रहे हैं।
दुकान वाला रो रहा है, मगर खाने को तो मिल रहा है दुकान वाले को, आपको हमको खाने को मिल रहा है, मगर जो लोग रोज कमाते हैं आज उनको आप निकाल दिए। और उन इलाकों में जब جب بینک نہیں ہے اور بینک میں لون نہیں ملتا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اے ٹی ایم میں کیش
ڈالیں؟ تو صرف مسلمان ہی پریشان, اور یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں آ رہا ہے, یہ انٹینٹ بتائیے نا پہلے.
مارجنلائز سیکشن جو ہے, مثال کے طور پر حیدرآباد میں ایسے کئی بڑے بڑے علاقے ہیں جو ایس بی آئی سی ایم ایس کو دیتی ہے, لوجی کیش آؤٹ سورس کر دیا. یہ لوگ پہلے کہاں پر کیش ڈپوزٹ کر رہے ہیں, کون سے اے ٹی ایم میں کر رہے ہیں؟ جو پوش علاقے ہیں وہاں سے کیش ڈپوزٹ کر کے وہ نیچے آتے ہیں سلمز میں.
آپ نے دو چیزیں بولی ہیں, آپ نے بولی ہیں کہ آپ کو جانکاری مل رہی ہے, کہاں سے جانکاری مل رہی ہے, کہاں دیکھا آپ نے, اور یہ انٹینٹ اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں کہ کیا یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے.
میں آپ کو ایک امپیریکل ڈیٹا دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مسلم علاقوں میں بینک نہیں ہے, اکاؤنٹس نہیں ہے, نہ لون دیا جاتا, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر دیں جن کو لون نہیں ملتا جہاں پر بینک نہیں ہے اس اے ٹی ایم میں پیسہ ڈالیں گے؟ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن آئیے حیدرآباد کو, کل ہی چلتے ہیں اتوار کو, آپ چل کے دیکھ لیجیے کہ اس کو بی بی سی کے رپورٹر کو بھیجائیے کہ اس نے یہ بات کہی ہے, جا کے پھر وہ بولیے. تھوڑا
حیدرآباد کے باہر بھی تو بھارت ہے, حیدرآباد میں
دلی بھارت تو نہیں ہے,
دلی کے باہر بھی بھارت ہے اور حیدرآباد کے باہر بھی بھارت ہے.
بالکل ہے, بالکل. تو میں آپ کو حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اورنگ آباد کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو علی گڑھ کی بات کر رہا ہوں, مراد آباد کی,
جہاں پر مسلم علاقوں میں جان بوجھ کر پیسہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے.
اے ٹی ایم میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا؟
اے ٹی ایم میں پیسہ صرف صرف مسلم علاقوں میں نہیں,
علاقوں کے مسلمان اور دلت کو دوسرے علاقوں میں کے اے ٹی ایم میں جانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے پڑ رہا ہے کہ جن سنیے جہاں پر بینکس ہیں وہاں پر کیش نہیں بھیجایا جا رہا ہے. آپ آؤٹ سورس کر چکے ہیں اس کو, ان کو فالو کریے, ان کو چارج دینے کے لیے بولیے, چلیے مجھے پروف رانگ کریے.
ایسے ماحول میں ویسی صاحب آپ ایسے ہی بات بول رہے ہیں جو آپ جسے ریٹرک کہیں گے زیادہ تر لوگ,
نہیں ریٹرک,
اور آپ کو اس کا فگرز نہیں دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے حیدرآباد میں ہوتا ہے, کچھ علاقوں میں ہوتا ہے.
سنیے دیکھیے, میں آپ کو امپیریکل ڈیٹا دینے تیار ہوں, دیپک موہنتی کی رپورٹ, ورلڈ بینک سی جی اے پی کی رپورٹ, آر بی آئی کی رپورٹ جس کہتی ہے کہ 3% پارٹیسپیشن ہے مسلمانوں کا. میں آپ کو کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, تلنگانہ میں سدھیر کمیشن آف انکوائری کی بات کر رہا ہوں, اینوئل منسٹری اینوئل رپورٹ ایم ایس ایم منسٹری کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈیٹا تو میرا آپ کا نہیں ہے نا, یہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے, ایکسکلوژن ہے
جان بوجھ کے.
یقیناً یہی رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, اس کو بھی ریٹرک بولیں گے آپ, اس کو بھی
کمیونٹی میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے,
لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیجئے, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, بی بی سی سے واپس ہیں, پڑھ لیجئے, آپ بتا دیجئے رونگ رونگ ہے تو. وہ
ایک سوال آیا ہے مہیش کمار دوبے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک سمودائے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں, ایک پوری ہیومینٹی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, اور آپ نے خود مسلمانوں کا کیا بھلا کیا ہے, مطلب آپ نے ایسا کیا کیا, آپ کو سمسیا کہہ رہے ہیں کہ پتا ہے آپ نے خود کیا کیا.
ٹھیک ہے, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا, آئے حیدرآباد دیکھیں ہم کیا نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں. تو اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنی لمبی چھوڑی لسٹ بیان کر سکوں, مگر ہم اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تبھی جا کر تو جیتتے ہیں الیکشن, ایسا تو نہیں ہے. وہاں پر ہمارا ایک سسٹم ہے کام کرنے کا, ایک کوآپریٹو بینک ہے, ہاسپٹلز ہیں, ہر سال 1,00,000 کے قریب گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو ہم لوگ ایجوکیشن کٹ پرووائڈ کرتے ہیں, بہت کام ہے ہمارا, وہ آ کے دیکھیں.
میں اس سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال ہے کہ جو آپ نے ڈاٹا پیش کیا, یہ ڈاٹا بہت دنوں سے پبلک ڈومین میں ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی مسلم لیڈر اور خاص طور پر آپ کی پارٹی نے کبھی مکھر ہو کر اس کے بارے میں زیادہ افیکٹولی آواز اور فورسفلی آواز نہیں اٹھائی, اور اس کی وجہ سے آج بھی وہ حالات اسی کی طرح سے, صرف ڈی مونیٹائزیشن کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا؟
میں اس کو سم اپ کر دوں کہ آپ پر جو چارج یہ ہے کہ آپ مسلم پالیٹکس کرتے ہیں, آپ موقع ڈھونڈتے ہیں ہندو مسلمان کی ڈبیٹ کو بھڑکانے کے لیے, اور جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں اس سے ایٹ لیسٹ یوتھ میں جو میسج جاتا ہے وہ بہت نیگیٹو جاتا ہے. ایسے وقت جب کہیں گے کہ آپ کو تو مطلب سامودائک پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر بات کرنی چاہیے.
نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں مسلمان کی بات کرا تو کیوں کس کے پیٹ میں درد ہو رہا؟ میں کوئی پاکستانی کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کوئی آئی ایس ایس ایجنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ہندوستان کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بینک کھولیے, بینک میں لون دیجیے, اے ٹی ایم کھولیے. یہ اپیزمنٹ ہے کیا؟ یہ اپیزمنٹ تو نہیں ہے. اور رہا سوال سلمان صاحب کے سوال کا, بھائی میرے پارلیمنٹ کے سپیچز ہیں, میرے کوسچنز ہیں, میرا کنٹریبیوشن ہے منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, یہی تو چیزیں ہم اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا ایم پی ان رپورٹس کو نہیں پڑھتا ہے تو میں کیا کروں؟ اور ایک بات, 13 مارچ 2016 کا ٹائمز آف انڈیا پڑھ لیجئے, محمد وجی الدین کی رپورٹ ہے, پرائرٹی سیکٹر لینڈنگ میں مسلمانوں کو صرف 2% ملتا ہے, وہ تو آر ٹی آئی کی رپورٹ ہے. اب آپ اتنے سب چیزیں رکھ کر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اے ٹی ایم میں کیش جائے گا؟
جان بوجھ کے نہیں جا رہا ہے.
دوسری بات, کیش اکانومی جو لوگ ڈیل کرتے ہیں, परेशान है, पिट रहे हैं।
वो पिट रहे हैं वो नई बात नहीं है ना। आप जो है, जैसे रजा खान हमारे जो फेसबुक देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर ऐसे जो वक्तव्य हैं उससे आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, आपके जो वक्तव्य हैं उससे कम्युनल डिवाइड बढ़ेगा और भाजपा को फायदा होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स को फायदा होगा।
80 सीट पे बीजेपी कामयाब होगी, मैं जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में 70 सीट जीत गए, मैं जिम्मेदार। महाराष्ट्र में 42 सीट जीत गए, मैं जिम्मेदार। दिल्ली में आप जीत गए, मैं जिम्मेदार। हरियाणा में हार गए, मैं जिम्मेदार। कश्मीर में जीत गए, मैं जिम्मेदार। कल के दिन आप कोई किसी घर में भैंस दूध नहीं देगी, मैं जिम्मेदार। मुर्गी नहीं पुकारेगी, मैं जिम्मेदार। अब कोई लीडर शादी नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार। तो बता दीजिए ना कि मैं हर मर्ज की दवा हूं, तो ठीक है मैं दवा देने तैयार हूं, ले लीजिए।
मैं भी पूछना चाहता हूं एक सवाल कि क्यों ऐसा होता है कि जब आपका बयान होता है तो पोलराइज हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो सवाल पूछा,
सलमान साहब
सीरियस सवाल, सीरियस बिहार की
सलमान सलमान साहब सुनिए, अगर ये ठेका लेके रखे हैं हिंदुत्वा फोर्सेस और सेकुलर लिबरल फोर्सेस, सेकुलर लिबरल फोर्सेस बोलते हैं कि आप नहीं पूछना, हम आपके ठेकेदार हैं। हिंदुत्वा फोर्सेस बोलते हैं कि भाई तुम तो एंटी नेशनल हो। तो भाई आखिर हम कहां जाएंगे? जब दलित की बात करेगा तो आपको एतराज नहीं है, अकाली दल सिखों की बात एतराज नहीं है, मराठा रिजर्वेशन की मराठा बात करते एतराज नहीं है, यादवों की बात करता एतराज नहीं है, कुर्मियों की बात करते हैं, पटेलों की बात करते हैं, जाटों की बात करते हैं, गुज्जरों की बात करते हैं, सबकी बात करेंगे। अरे भाई मैं आपको एम्पिरिकल एविडेंस पे कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान का ये माइनॉरिटी का बड़ा हिस्सा सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और डेटा है ये, कोई मैं आसमान से नहीं बता रहा
हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कोई नई बात नहीं बोल रहे,
नई बात नहीं, हकीकत है ये।
आप हकीकत बात बोल रहे हैं कि मुसलमान पिछड़ा है, उस पर काम करने की जरूरत है ओवैसी साहब, लेकिन बात ये कि आपने बिहार में गए, बिहार में आपको कोई सफलता नहीं मिली। जो मुसलमान है इस देश का वो मुसलमान पार्टी या मुसलमान नेता के आधार पर नहीं वोट देता है। हमने यूपी में देखा मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे वो बुरे हों अच्छे हों, लेकिन मुसलमान बड़ी तादाद में वोट निकल। आप जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं,
अच्छा है ना, पब्लिक रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे तक तकलीफ की बात क्या है, ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं 6 सीट
मुसलमानों की बात करूँ,
मैं 6 सीट लड़ा बिहार में, और कह रहे थे कि नहीं सुनिए 6 सीट लड़ा वहाँ बीजेपी नहीं जीती।
आपने भी कोई झंडे नहीं गाड़े वहाँ,
आज नहीं गाड़े कल गाड़ेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान
जा रहा था आपसे कि क्यों ये इल्जाम लगता है कि आपकी कोई सीक्रेट, ये जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने भी ये इल्जाम लगाया कि आपकी कोई सीक्रेट डील है बीजेपी के साथ।
नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी मुसलमान नहीं जीता। ससुरे जीत गए, बहू जीत गई, भतीजा जीत गया, पड़पोता जीत गया, भाई के बेटे का बेटा जीत गया, मुसलमान नहीं जीता। मर ओवैसी जिम्मेदार, वहां दूसरी पार्टी में माँ और बेटे कामयाब हो गए, मुसलमान नहीं जीतता। आजादी के बाद से एक भी मुसलमान यूपी से नहीं जीता, तो इसका नहीं, इसको मैं, ये फैक्ट है। शायद मेरा बोलने का तरीका आपको लग रहा है कि मैं इसको लेवल ऑफ डिबेट को नॉन सीरियस कर रहा हूँ, मगर हकीकत है वो।
आप जब मैंने आपको देखा है, जब टीवी में बोलते हैं आप तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, और जब आप रैली में बोलते हैं तो
रैली में देखिए, रैली सुनिए, रैली थोड़ी अलग होती है। अगर कोई दूसरा बोलता है तो लोग सो जाते हैं, तो मैं क्या करूं?
तो आप उसको थोड़ा लाइव करने,
रैली में मैं साइंटिस्ट की तरह नहीं बोल सकता।
वैसे ये सवाल ये है ना, आप कह रहे हैं कि आप अपोलोजेटिक नहीं है, आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं उसमें कोई अपोलोजेटिक नहीं, लेकिन सवाल ये कि भारत मुसलमान और हिंदू देश नहीं है ना।
कौन कह रहा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 है।
तो जब आप बोलते हैं, हमारे मुस्लिम इलाकों में, तो हमारे मुस्लिम इलाके क्या होता है?
नहीं है,
आप तो बोल रहे हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं,
आप भी मेरे,
मैं आपको कोट कर रहा हूं।
अरे हमारे हैं, बिल्कुल है।
जो मुसलमान नहीं वो आपके इलाके नहीं है?
क्या
जो मुसलमान इलाके नहीं है वो आपके इलाके नहीं है?
देखिए यही तो प्रॉब्लम मीडिया से है, आप उसी सिलेक्टिव जूसी हिस्से को निकालते हैं।
मैं आपको लाइव कोट कर रहा हूं,
आप स्पीच चला दीजिए, चलिए मैं बैठने तैयार हूं।
अभी
नहीं, आप चला दीजिए, मैं बैठने तैयार हूं। मैंने दलित कहा ला, उसमें बैठने
तैयार। दलित आपने बोला है, लेकिन मैं आपको ये जो कोट कर रहा हूं, हमारे
मैं आपको कह रहा हूं कि उस इलाकों में नाइंसाफी हो रही है,
दूसरे इलाकों में नाइंसाफी नहीं हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा,
पैसा नहीं आ रहा, यकीनन मैं मान रहा हूं, मगर यहां पर तो हम तो क्या बोल रहे हैं, अरे भाई फूल ने तो फूल की पत्ती दे दो।
ये थे असदुद्दीन ओवैसी, और उनसे बात कर रहे थे विनीत खरे और सलमान रावी। और अब आइए चलते चलते जरा चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की। आदेश कुमार गुप्ता एक बार फिर से सामने हैं मेरे, जी बताइए।
जी निखिल, चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच जो पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आज जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 4 विकेट को 391 रन था। आज भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 199 रन बनाकर आउट हुए, और जब खेल समाप्त हुआ तब करुण नायर 71 और मुरली विजय 17 रन बनाकर खेल रहे थे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता खेल समाचारों के लिए। समय बचा नहीं है इसलिए समाचार आपको सुना नहीं पाएंगे, अगर देखना है तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो संभाला है राजेश चौहान ने, निखिल गुदीजन मती, नमस्कार।